शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा अर्थे वास्तविक कारण ही निश्चय ही अविद्यमाने न रहने पर अपि यद्यपि संस्कृति ही संसार न नहीं निवर्तते छुटकारा पाता है मनसा मनसे लिंग रूपेण सूक्ष्म शरीर से स्वप्ने स्वप्न में विचरतः कार्य करते हुए यथा जिस प्रकार। अनुवाद, कभी कभी हमें इसलिए कष्ट होता है क्योंकि हमें स्वप्न में शेर या सर्प दिख जाता है, किंतु वास्तव में वहां न तो शेर होता है न सर्प। इस प्रकार हम अपनी सूक्ष्म अवस्था में कोई परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं और उसके परिणामों को भोगते हैं। इन कष्टों का निवारण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने स्वप्न से जग नहीं जाते। कृपया मेरे पीछे अनुवाद दोहराइए। कभी कभी हमें इसलिए कष्ट होता है क्योंकि हमें स्वप्न में शेर या सर्प दिख जाता है, किंतु वास्तव में वहां न तो शेर होता है न सर्प। इस प्रकार हम अपनी सूक्ष्म अवस्था में कोई परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं और उसके परिणामों को भोगते हैं। इन कष्टों का निवारण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने स्वप्न से जग नहीं जाते। तात्पर्य, जैसा कि वेदों का कथन है, जीव सदैव सूक्ष्म तथा स्थूल इन दोनों प्रकार के शरीरों से पृथक रहता है। हमारे सारे कष्ट भौतिक इन शरीरों के कारण है। भगवद गीता में इसकी व्याख्या की गई है, मात्र स्पर्शांस्तु कौथेय शीतोष्ण सुख दुखदः आगमापायिनो नित्या स्थानस्थितक्ष्वा भारत। हे किंतु पुत्र, सुख तथा दुख का अस्थायी प्राकट्य और फिर उनका दृश्य होना शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं के प्राकट्य तथा उनके प्रस्थान के समान है। हे भारत, हे भरत होगा भारत, हे भारत, वे इंद्रियों एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न है और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उन्हें सहना सीखे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सारे शारीरिक कष्ट आते जाते रहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे। हमारे सारे कष्टों का कारण यह संसार है, क्योंकि एक बार भौतिक स्थिति से छूट जाने पर हमें फिर से कष्ट नहीं उठाने पड़ते। इसीलिए वेदों की शिक्षा है कि मनुष्य यह वास्तव में समझे कि वह पदार्थ नहीं अपितु ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। यह समझ तब तक नहीं आ पाती जब तक कोई ब्रह्म कर्म अर्थात भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता। भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत अपनाना आवश्यक है और वही एकमात्र उपचार है। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाका चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों के आशीर्वाद की कामना करते हुए हम इस श्लोक के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज के श्लोक में नारद मुनि राजा प्रचंड को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्यों कहते हैं, अर्थे ही विद्यमाने भी संस्कृतिर्न निवर्तते मनसालिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। कभी कभी हमें इसलिए कष्ट होता है क्योंकि हमें स्वप्न में शेर या सर्प दिख जाता है, किंतु वास्तव में वहां न तो शेर होता है न सर्प। इस प्रकार हम अपनी सूक्ष्म अवस्था में कोई परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं और उसके परिणामों को भोगते हैं। इन कष्टों का निवारण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने स्वप्न से जग नहीं जाते। तो यहां इस अनुवाद में स्वप्न की चर्चा हो रही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इस जगत में सारे जीवात्मा एक प्रकार से कार्य करते हैं, वो स्वप्नवत ही होता है। तो तीन प्रकार की स्वप्नावस्था प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं आठवें स्कंद के पहले अध्याय के 90वें श्लोक में। तो भौतिक जीवात्मा जब वो जागृत अवस्था में होता है वो भी स्वप्न देखता है, जब वो सोता है तो स्वप्न देखता ही है, और जब वो पुनः इस संसार का प्रलय हो जाता है तो जब वो विष्णु के शरीर में प्रवेश करता है वो भी एक स्वप्नावस्था है। तो स्वप्नावस्था क्यों कही गई है, बाकी सोने के बाद तो स्वप्नावस्था है, विष्णु के शरीर में प्रवेश करने के बाद स्वप्नावस्था उसको समझा जा सकता है, पर जब व्यक्ति जागृत अवस्था में है तो वो स्वप्नावस्था में कैसा है। तो इसीलिए क्योंकि जो भी वो जागृत अवस्था में जो भी कार्य करता है वो एक प्रकार से आगे भविष्य में जो होने वाला है या जो होना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, एक मेंटल स्पेकुलेशन करते हुए उसको सोचता है कि मैं ऐसा होऊंगा, है ना। जिस तरह से एक बचपन में अगर कोई छोटा सा बालक होता है तो छोटा सा बालक सोचने लगता है कि जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, है कि नहीं, तो मैं क्या होऊंगा, सुख हो जाऊंगा। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी अलग चिंताएं होती है, वो सोचता है कि जब मैं अच्छी तरह से कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करूंगा तो मैं सुख को प्राप्त करूंगा। और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी चिंता बढ़ती है, अच्छे कंपनी में जॉब लगने के लिए, एक अच्छी पत्नी को प्राप्त करने के लिए, अच्छा सेटलमेंट करने के लिए, हर एक समय में उसका ये जो ड्रीम है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ता जाता है, है ना, कीप ऑन ड्रीमिंग। तो इस तरह से वो सपनों को देखता रहता है और इस तरह से वो पाता ही ऐसा नहीं है। अपने अपने कर्मों के कर्म के अनुसार हर एक व्यक्ति को जिस तरह से वो डिजायर करता वो प्राप्त हो सकता है, पर सबको सारी भले अगर कोई व्यक्ति, हर एक व्यक्ति चाहता है बिलगेज बनने के लिए, बिरला बनने के लिए, अंबानी बनने के लिए, पर वो बन पाता है, नहीं बन पाता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। और इसके बाद हम देखते भी हैं कि जब वो भले भी सोता है तो सोने के बाद भी वो स्वप्नावस्था में चला जाता है। अरे स्वप्न भी किसके अनुसार आते हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार। जिस तरह से ये स्वप्न, जिस तरह से हर एक व्यक्ति का कर्म होता है उस तरह से उसको स्वप्न भी आते हैं। तो ये स्वप्न भी एक प्रकार से अपने पाप कर्म की प्रतिक्रिया है। पिछले जन्म में अगर कोई सांप है तो स्वप्न में उसको सांप दिखता है कि नहीं। जिस तरह से जो शरीर उसको पिछले जन्म में प्राप्त था उस तरह से स्वप्न में उसका वो इनविजन करता है कि नहीं, उसको उस तरह से देखता है, पर रियल होता नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं दिन भर नॉर्मली जिस तरह से वो दिन भर में कार्य करता है उस तरह से रात में बड़बड़ता रहता है। जैसे रात में हम लोग सोए थे, एक भक्त बड़े आवाज से चिल्ला रहा था, तो क्या हो गया पता नहीं चला। तो हमने सुबह उसको पूछा, कुछ पता चला आपको क्या, वो बोला नहीं मुझे पता नहीं था क्या हो रहा था। तो स्वप्नावस्था में वो क्या करता है वो पता नहीं चलता है। दिन भर अगर कुछ कार्य करता है ना, अगर आप देखते हैं कोई लेबरों के पीछे भागते रहता है तो चिल्लाता रहता है, तो रात में सोएगा तो वो चिल्लाएगा ही, है ना। रात में ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी नोएडा में जब मैं रहता था तब एक मेरे पास साथ एक रूम पार्टनर रहता था, वो रात में चिल्लाता रहता था। दिन भर जब वो किसी कारण लेबरों के ऊपर अगर चिल्लाता तो वो क्या करता था, रात के समय भी चिल्लाता रहता था। तो ये इस तरह से भगवद गीता में एक श्लोक आता है। तो ये जब जागृत अवस्था में व्यक्ति होता है तो किस तरह स्वप्न देखता है, पर वो वैसे आत्म साक्षात्कार पुरुष के लिए वैसा नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार पुरुष का विचार कैसा होता है, तो भगवद गीता कहती है,
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सब सारे भूत मतलब जीवात्मा जब क्या होते हैं, सोए होते हैं, तब वो क्या संयमी व्यक्ति, जब उसकी जिनकी इंद्रिय वश में है वो व्यक्ति क्या करता है, वो जागृत हो जाता है। और किसके लिए? आत्मा की उन्नति के लिए जागृत हो जाता है। और जब वो यस्याम जागृति भूतानी, जब सारे जीवात्माएं जगे होते हैं, शारीरिक कार्य करते रहते हैं, है ना, हाँ, अलग अलग स्वप्न देखते रहते हैं, उस तरह से या निशा पश्यतो मुने, तो मुनि क्या करता है, उसके लिए वो एक प्रकार से रात है। प्रभुपाद जी एक जगह पे इसको कंटिन्यू करते बोलते हैं कि मुक्त जीवात्मा को जो आत्म साक्षात करे पुरुष है, उसके लिए क्योंकि वो अपने वास्तविक स्थिति में वो उठ चुका होता है ना, भगवान का सेवक इस रूप में वो उठ चुका होता है ना, अपने आप को वो भगवान का सेवक मानता है, उसी रूप में वो कार्य करता है, तो उसको ये सारा जगत का कार्य एक स्वप्नवत दिखता है। इवन वो अपने शारीरिक जो भी कार्य करता है, वो भौतिक क्योंकि अपनी शरीर है तो शरीर के कार्य होंगे, वो शरीर के कार्य भी उसके लिए कैसे बन जाते हैं, स्वप्नवत बन जाते हैं, उसको वो सत्य नहीं मानता है ना, वो सत्य नहीं मानता है। पर बद्ध जीवात्मा का वैसा नहीं है, बद्ध जीवात्मा का भले वो जगा है तो भी एक प्रकार से स्वप्न देखता है, सुख प्राप्त करने के लिए स्वप्न देखता है, पर सुख प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य वो करता है वो उसकी परिणति किसमें होती है, दुख में परिणति होती है। जब कोई भी जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, वो 101% किसको प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त करता है, क्योंकि वो शारीरिक स्तर पर है, क्योंकि वो रियल नहीं है। जिस तरह से जीवात्मा, और ये देखिए एक ही जन्म में नहीं, ये 84 लाख योनि में चलता आया है और शाश्वत काल से चलता आ रहा है। 84 लाख एक प्रकार से स्टेशन, जिस तरह से एक ट्रेन में अगर कोई बैठता है अलग अलग पैसेंजरों के साथ, तो अलग अलग स्टेशन में वो पैसेंजर उतर जाता है, तो जो ट्रेन में बैठा है वो उतरे हुए ट्रेन में बैठा है, उसके लिए जो उतर गए वो पैसेंजर एक प्रकार से स्वप्नवत हो जाते हैं, अनरियल हो जाते हैं, असत्य हो जाते हैं। उस तरह से अलग 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 योनियों में अलग अलग शरीर जब वो प्राप्त करता है, तो पिछले जन्म का जो उसका कार्य है वो प्रकार से वो क्या बन जाता है, उसके लिए स्वप्न बन जाता है, वही कार्य वो स्वप्न में उसको दिखता भी है। तो इस तरह से ये स्वप्न अनंत काल से, अनंत जीवन काल से हम देखते आए हैं, अरे बंद नहीं होता है, इतने आसानी से उसको बंद करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए भक्तों ने ठाकुर जीव जागो गौरा चांद बोले, हम बीच में गाएंगे उसको, कि किस तरह से जीवात्मा को जगना चाहिए, कितनी आवश्यकता है। ये भौतिक जीवात्मा के लिए ऐसा स्थिति है, पर आध्यात्मिक, जब वो आध्यात्मिक स्तर पर जीवात्मा उठ जाता है तो उसके लिए वो स्वप्न भी रियल बन जाता है, स्वप्न भी रियल बन जाता है, उसके लिए वो स्वप्न स्वप्न नहीं रहता है। भौतिक स्तर पर वो स्वप्न अलग है, आध्यात्मिक स्तर पर वो स्वप्न अलग है। भौतिक स्तर पर वो स्वप्न एक प्रकार से अपने पाप कर्म के रिएक्शन से, आध्यात्मिक स्तर पर वो जो भी स्वप्न देखता है वो भगवान के एक प्रकार से सेवा रूप में ही वो स्वप्न देखता है, वो स्वप्न भी एक प्रकार से भगवान की सेवा बन जाती है। तो अलग अलग उदाहरण, जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी एक समय जब वो भगवान को स्वीट राइस बनाकर वो अर्पण करते स्वप्न में, स्वप्न में सारा स्वीट राइस खा भी लेते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है, उनका पेट खराब हो जाता है, पेट में गड़बड़ी हो जाती है। तो जब दूसरे दिन उठते हैं तो पेट दुखते हैं, तो उनको वैद्य को बुलाया जाता है। जब वैद्य आता है तो वैद्य उनका निदान करता है, तो बताता है कि इन्होंने बहुत स्वीट राइस खाया है, स्वीट राइस खाया है। तो उनके अन्य जो भक्त थे उनके साथ, वो तो बोले इतना सा छाछ पीते थे, वो स्वीट राइस कहाँ से खाया उन्होंने, तो उनको सत्य नहीं लग रहा था। पर जब रघुनाथ दास गोस्वामी सोता उनको पूछा, तो हाँ मैंने स्वीट राइस खाया है, स्वप्न में खाया है। तो स्वप्न में स्वीट राइस खाने के कारण उनका क्या दुख रहा था, पेट खराब हो गया, दुखने लगा। तो ऐसी अवस्था है। इवन हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, प्रभुपाद जी को भी जब उनको आदेश प्राप्त हुआ संन्यास लेने के लिए, तो उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर उनको आदेश कहाँ देते हैं? स्वप्न में देते हैं। पर आपको प्रभुपाद जी को देखने के बाद लगता है इट्स हॉरिबल, मैं संन्यास लेना नहीं चाहता हूं। तो अगर किसी साधारण अवस्था में भक्तों को भी अगर भगवान के गुरु के स्वप्न आते हैं तो शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। और बाद में रूप गोस्वामी भी जब भगवान प्रभुपाद जी को स्वप्न में आकर उनको आदेश देते हैं कि आप लंदन नहीं न्यूयॉर्क जाइए प्रचार करने के लिए, जब उनके वो चाहते थे कि लंदन जाने के लिए तो कहाँ जाने के लिए आदेश देते हैं? न्यूयॉर्क जाने के लिए। तो स्वप्नावस्था में उनको आदेश प्राप्त हुआ। तो एक दिव्य स्तर पर जब स्वप्न में आदेश भी प्राप्त होते हो तो सत्य माने जाते हैं। तो तुकाराम महाराज को दीक्षा भी कहाँ प्राप्त हुई? स्वप्न आदेश, स्वप्न में ही प्राप्त हुआ। तो हम और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी का बहुत अच्छी तरह से उदाहरण शास्त्र में आता है कि उनको जो भी आदेश प्राप्त हुए वो आदेश कहां प्राप्त हुए? स्वप्न में प्राप्त हुए। माधवेंद्रपुरी जब तीर्थाटन करते हुए घूमते घूमते वृंदावन में आते हैं, वृंदावन में आने के बाद वो जब वृंदावन वृंदावन में जाते जाते वो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद वो एक पेड़ के नीचे गोविंद कुंड के पास, पेड़ के नीचे गोविंद कुंड में स्नान करने के पश्चात बैठ जाते हैं। जब वो बैठ जाते हैं, क्योंकि उनकी अव्याचक वृत्ति थी तो वो कभी भी किसके पास वो मांगने नहीं जाते थे। जब तक कोई उनको लेकर, अगर कोई खाना भी है तो जब तक कोई खाना उनको उनके सामने लेकर नहीं आता तब तक वो खाते नहीं थे। इस तरह से उनका कार्य था। तो उसी समय एक दिन एक छोटा सा बालक, गो बालक, उनको दूध का लोटा लेकर आता है और उनको कहता है गोपाल बालक एक दुग्ध बांड लग गया, आसी आगे धरी किचू बलील हसिया। जब वो वृक्ष के नीचे बैठे थे उस समय एक अज्ञात ग्वाल बालक आकर उनको दूध का पात्र देता है और माधवेंद्रपुरी के सामने हंसकर कहता है पुरी यही दुग्ध लैया करो तुम्हें पान, मागी कहने ना ये खाओ कि बा कर ध्यान। हे माधवेंद्रपुरी कृपया मेरे द्वारा जो दूध लिया वो दूध लाया है उसको पीजिए, आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लेते? आप किस तरह का ऐसा ध्यान कर रहे हैं, कौन सा आप ध्यान कर रहे हैं, है ना? बाल के रे सौंदर्य पूरी रह हईल संतोष, तार मधुर वाक्य गेल भोग शोष। उस बालक के सौंदर्य को देखकर माधवेंद्रपुरी अत्यंत संतुष्ट होते हैं, उसके मीठे वचन सुनकर वे अपनी सारी भूख और प्यास भूल जाते हैं। पूरी कहे के तुम्हें कहा तुम्हार वास, आप कहां से आए हो, है ना, आपका नाम क्या है? के मते जानी ले आमी करी उपवास, आप कैसे जान पाए कि मैंने उपवास किया है? बालक कहे गोपा आमी यही ग्राम में वसी, मैं इसी ग्राम में रहता हूं, मैं गोप बालक हूं। हमार ग्राम में ते के ना रहे उपवासी, जो भी हमारे गांव में आता है वो कोई भी उपवास नहीं करता। केह अन्न मागी खाय, केह दुग्धहार, अयाचक जने आमी दिए तो आहार। इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे से मांगकर भोजन कर सकता है, कुछ लोग केवल दूध पीकर रहते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से भोजन नहीं मांगता तो मैं उसको खाने की सारी वस्तुएं देता हूं। जल नित्य स्त्री गण तोमार देखी गेल, स्त्री सब दुग्ध दिया हमारे पाठाइल। पानी लेने आए वे स्त्रियों को जब आपको देखे तो उन्होंने यह दूध देकर मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने देखा कि आपने कुछ भी नहीं खा रहे हैं, कुछ किसी को मांग भी नहीं रहे, तो इस तरह से उन्होंने मुझे दूध देकर भेजा है। जब वो स्त्रियां गोविंद कुंड में आई थी पानी लेने के लिए, गोदहने करी ते चाही शीघ्र आमी ग्राब, हर बार आसी आमी यही भांड लईब। बालक ने आगे कहा मुझे शीघ्र ही गाय दुहने जाना है, किंतु मैं लौट कर यह दूध का पात्र आपसे ले जाऊंगा, आप उसको दूध पी लीजिए, बाद में मैं जब गाय दुहने मुझे जाना है उसके बाद मैं जब आऊंगा तो लोटा लेके जाऊंगा। और इस तरह से जब माधवेंद्रपुरी उस दूध को पीते हैं और उनको वो सोचने लगता है कि कब वो आएगा बालक, छोटा सा बालक पुनः लोटा लेने के लिए। तो सोचते सोचते वो चिंतन करते करते क्या हो जाते हैं, उनको नींद लगती है। हरे कृष्ण जप करते करते वो नींद लगती है, और नींद में वो छोटा सा बालक वो पुनः उस स्वप्न में उनको क्या दिखाई पड़ता है। और वो क्या करता है, सपने देखे से ही बालक समूह के आसिया एक कुंजे लिया गेल हाथे ते धरिया। माधवनपुरी ने सपने में उसी बालक को देखा, वो बालक उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें जंगल में कुंज तक ले गया। कुंज दिखाई कहे आमी यही कुंजे रही, शीत वृष्टि वाताग्नि ते महादुख पाई। बालक ने माधवेंद्रपुरी को कहा कि ये कुंज दिखाया और कहा कि मैं इसी कुंज में रहता हूं, अतएव मुझे कड़ाके की ठंड, बरसती वर्षा, वायु तथा जुलसती गर्मी के कारण अत्यंत कष्ट होता है। तो आगे तो आप क्या करो, ग्रामेर लोक आनी आमा काड़ कुंज हेते, मुझे इस कुंज से बाहर निकालो, ग्राम के लोगों को बुलाकर मुझे इससे बाहर निकालो। पर्वत ऊपर ही लैया राख भाल मते, और मुझे पर्वत के ऊपर प्रस्तव इंस्टॉल करो, है ना। इस तरह से एक मठ करी तहां करह स्थापन, एक छोटा सा मंदिर बांधकर मुझे क्या करो, वहां स्थापित करो। बहु शीतल जले कर श्री अंग मार्जन, और शीतल जल से मुझे मेरा अंग का मार्जन करो। बहु दिन तोमार, ये सारा स्वप्न में हो रहा है। बहु दिन तोमार पतक करी निरीक्षण, में आपका बहुत दिन से रहा, देख रहा था कब माधवेंद्रपुरी आएगा और मुझे यहां से बाहर निकालेगा। और इस तरह से माधवेंद्रपुरी जब उठ जाते हैं तो ये स्वप्न के आदेश, स्वप्न आदेश के अनुसार उस कुंज में से ब्रजवासियों की मदद से उनको बाहर निकालते हैं, और बहुत अच्छी तरह से बड़ा उत्सव मनाते हुए उस गोपाल को, उस गोवर्धन के ऊपर उसकी स्थापना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब उनको बहुत सारा भोग लगाया जाता है, तो जिस तरह से भगवान के समय अन्नकूट फेस्टिवल मनाया गया था, उसी तरह से बहुत बड़ी मात्रा में ब्रजवासियों ने गोपाल को स्थापना करने के बाद इतना बड़ा ऑफरिंग भगवान को बनाया गया, बनाया था। और इसके बाद माधवेंद्रपुरी गोपाल की सेवा पूजा दो बंगाली ब्राह्मणों को दीक्षित कर चलाते हैं और अच्छी तरह से स्थापित करते हैं सेवा पूजा भी। बाद में कुछ कारणवश यही गोपाल श्रीनाथ जी नादौरा में चले जाते हैं, जो कि स्टोरी आप जानते हैं। और इस तरह से जब वो एक समय जब अच्छी तरह से सेवा पूजा चलने लगी, तो उस समय पुनः माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में भगवान उस गोपाल रूप में आते हैं और उनको कहते हैं, गोपाल कहे पुरी आमार ताप नहीं ग्राय, मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ा है। दूसरी बार जब वो स्वप्न आता है तो गोपाल क्या करते हैं, सपने माधवेंद्रपुरी को देखकर वो गोपाल कहते हैं, मेरे शरीर का ताप अभी तक कम नहीं हुआ है, क्योंकि उनको गर्मी में नीचे जमीन के नीचे रखा था, इसके लिए बहुत गर्मी थी शरीर में, तो अभी तक कम नहीं हुआ है। तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। और हम देखते हैं कि इस जिस तरह से माधवेंद्रपुरी ने लेप लगाया, वो लेप हम भी लगाते हैं चंदन यात्रा के समय, है कि नहीं। तो मलय ज आन या नीला चल हैते, अन्य हैते नहे तुम्ही चल त्वरिते। इस तरह से कोई न सोचते हुए जगन्नाथपुरी के लिए ये माधवेंद्रपुरी चलने लगते हैं। जब बीच में माधवेंद्रपुरी चलते चलते रेमुना में किरचोर गोपीनाथ, एक्चुअली ये उनके इनके पास टाइम के बाद उनका नाम किरचोर गोपीनाथ पड़ता है, तो गोपीनाथ मंदिर में आते हैं और वहाँ गोपीनाथ जी माधवेंद्रपुरी का भाव देखते हुए खीर को चोरी करते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि जिस तरह से माधवेंद्रपुरी का नाम बढ़ता है तो ये नाम जगन्नाथपुरी तक भी पहुँच जाता है। माधवेंद्रपुरी आने के पहले ही जगन्नाथपुरी में उनका नाम फैला चुका होता है, कितने महान भक्त है इस तरह से। और बाद में जब जगन्नाथपुरी वो जाते हैं, तो जगन्नाथपुरी में जाने के बाद वहाँ के भक्तों ने उनको मदद की चंदन प्राप्त करने के लिए, और एक ब्राह्मण और एक सेवक उनको साथ दिया, और कुछ जो भी लक्ष्मी उनको चाहिए था, है ना, टोल के लिए, वो सब कुछ उनको अरेंज करके दिया। और इस तरह से पुनः जब वो दो ब्राह्मणों को लेकर माधवेंद्रपुरी वो चंदन को लेकर पुनः चलते हैं, तो रास्ते में आते आते वो पुनः वो कहाँ आते हैं, रेमुना में आते हैं गोपीनाथ के वहां। तो उस समय गोपीनाथ की क्या जो पुजारी है वो ब्राह्मण पुजारी उनको पुनः खीर को देते हैं, उनकी महानता को जानते हुए गोपीनाथ जी को खीर जो शीर है वो पुनः उनको प्रदान करते हैं। माधवेंद्रपुरोक शीर खाते बड़े ही आनंदित हो जाते हैं, प्रेमोल्लासित हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो रात के समय में वो निद्रावस्था में निद्रावस्था में चले जाते हैं, तो पुनः गोपाल उनके स्वप्न में आकर वो क्या कहते हैं, सही रात्रि देवालय करील शयन, शेष रात्रि हैले पूरी देखील स्वप्न। पुनः रात्र के समय में उन्होंने क्या देखा, स्वप्न देखा। गोपाल आसिया कहे सुन हे माधव, कर्पूर चंदन आमी पाइलाम सब, मुझे सारा चंदन और कर्पूर प्राप्त हुआ है ना, कर्पूर सहित घसी ये सब चंदन, गोपीनाथ तेरे अंगे नित्य करह लेपन। अब तुम क्या करो, सारा चंदन कर्पूर के साथ घिसकर गोपीनाथ के विग्रह पर इसका प्रतिदिन लेप करते रहो जब तक वो समाप्त न हो जाए। गोपीनाथ अमार से एक ही अंग है, गोपीनाथ और मुझ में कोई अंतर नहीं है। यहां के चंदन दिले हबे मोर तापक्ष, और अगर आप गोपीनाथ के शरीर के शरीर पर चंदन लगाओगे तो वो चंदन के प्रभाव से मुझे भी शीतलता प्राप्त होगी। तो इस तरह से तीनों भी स्वप्न आदेश माधवेंद्रपुरी के माधवेंद्रपुरी को प्राप्त हुए गोपाल के द्वारा। तो हम देखते हैं एक मुक्त अवस्था में जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो स्वप्न नहीं होता है, स्वप्न अवस्था में वो कार्य करता वो भी रियल होता है। पर एक जो बद्ध जीवात्मा है वो बद्ध जीवात्मा जागृत अवस्था में भी जो कार्य करता है वो भी स्वप्न होता है कि नहीं, वो भी क्या होता है, स्वप्न ही होता है। तो ये स्वप्न चलते जाता है जन्म जन्म तक, जब तक जीवात्मा भगवान को स्वीकारता नहीं है तब तक वो स्वप्न बंद भी नहीं हो पाता। अलग अलग स्तर पे व्यक्ति अलग अलग स्वप्न देखता है, बद्ध अवस्था पे वो अलग स्वप्न देखता है क्योंकि भगवान को स्वीकारना नहीं चाहता है। इवन भगवान इस धरती पर आ भी जाते हैं तो भी वो क्या समझता है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिन तन्वाश्रितम परम भाव मैं न जानंतो मम भूत महेश्वरम, वो नहीं जानता है मेरा परम भाव नहीं जानता है, मुझे मनुष्य समझकर मुझे वो स्वीकार नहीं करता है। और इस तरह से जीवात्मा किसी भी हालत में भगवान को स्वीकार करना नहीं चाहता है। कृष्ण भुलिया जीव भोगवांचा करे, इस तरह से वो भोग इच्छा से अलग अलग स्वप्न देखता रहता है। जब वो स्वप्न देखता है सुख के लिए, कोई भी आशा कर सुख के लिए, तो वो सुख प्राप्त करते समय दुख को प्राप्त करता है। झपटिया दरी माया क्या करती है, उसको झपट लेती है। माया झपटिया मतलब क्या करती है, दुख देती है। सुख प्राप्त करने के लिए जब भी जीवात्मा प्रयास करता है उसको दुखी प्राप्त होता है कि नहीं। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस अवस्था से कोई समोदर कोई मनुष्य अगर जागृत हो भी जाता है, मनुष्याणाम सहस्रेशु कच्चित यतिति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कच्चिन मा व्यक्ति तत्वतः, हजारों में कोई व्यक्ति जानता है कि भगवान है और उसमें से कुछ विरला व्यक्ति भगवान को शरणागत होता है और उसमें से कोई सिद्ध व्यक्ति भगवान को तत्वतः जानता है। तो बोले भगवान को स्वीकार करने के बावजूद भी सारे व्यक्ति भगवान को शरणागत होते हैं ऐसा नहीं है, सारे शरणागत व्यक्ति भगवान को पूरी तरह तत्वता जानते ही ऐसा भी नहीं है। तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग अवेकनिंग जागृति चेतना में होती रहती है। बद्ध अवस्था में थोड़ी सी जागृति हो जाती है तो भगवान को स्वीकार कर लेता है, थोड़ी और जागृति हो जाती है तो शरणागत होता है, थोड़ी और जागृति होती है चेतना में तो क्या करता है, भगवान को तत्वता जानता है। जब तक वो तत्वता भगवान को जानता नहीं है तब तक इस संसार में वो पूरी तरह से आनंद को प्राप्त नहीं करता। और इस तरह की स्थिति में इवन एक साधक जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की शरणागत लेने का प्रयास करता है तो भी उसको बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। ऊपर नीचे बहुत सारे भय का सामना करना पड़ता है, पूर्व जन्म के किए हुए पापों के कारण उसमें उसके जीवन में बहुत सारे अड़थे कठिनाई उसको सामने करना पड़ता है ना। फिर भी इस सारे स्ट्रगल में जब व्यक्ति गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करने का प्रयास करता रहता है सारी कठिनाइयों के बावजूद भी, तब वो पूरी तरह से अधोशब्दा तथा साधु संग भजन क्रिया नृत्य निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव प्रेम तक आसक्ति भाव और प्रेम तक चला जाता है। तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग जागृति है कि नहीं। अधोश्रद्धा पर अलग जागृति है, साधु संघ स्तर पर अलग जागृति है, भजन क्रिया स्तर पर अलग जागृति है। साधु संघ पे थोड़ा जागृत हो जाता है, भजन क्रिया करना कर लगता है और भजन अच्छा होता होने लगता है तो अनर्थ निवृत्ति होने लगती है। और इस अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर अगर वो पूरी तरह से गुरु और कृष्ण को वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए उनके मार्ग पर चलता है तो ये अनर्थ निवृत्ति होती है। और सही तरह से वो गुरु कृष्ण प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता है तो इस अनर्थ निवृत्ति को बहुत समय लगता है, एक समय लग सकता है या बहुत जन्म भी ले सकता है। बहु जन्म यदि अगर वो भजन करने का भी प्रयास करता है, अगर सही तरह से उसको भाव वो निर्माण नहीं करता है, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रयास नहीं करता है, तब तो को कई जन्मों तक भी अगर इसको भजन करने के लिए प्रयास करे तो वो पूरी तरह से अनर्थों से मुक्त नहीं हो सकता है कि नहीं। तो समोदर इस सारी एक्टिविटी में सारे स्ट्रगल में अगर समोदर जीवात्मा साधक स्तर पर वो समझ पाता है कितनी भी कठिनाई कितनी भी पाप भावनाएं वासनाएं मेरे अंदर क्यों ना हो, तो इस सारे स्तर पर मैं मेरा जो प्रयास है भगवान की सेवा करने का, भगवान को प्रसन्न करने का, गुरु को प्रसन्न करने का, श्री प्रभुपाद जी को आचार्यों को प्रसन्न करने का जो मेरा प्रयास है उसको मैं कभी भी रोकूंगा नहीं। और इसे दृढ़ता पूर्वक जो वो प्रयास करता है तभी जाके भगवान की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करता है। अभी के समय में हम दामोदर अष्टकम गाते हैं तो यशोदा ने भी जब भगवान को पूरी तरह से प्रयास किया बांधने के लिए, तो जब तक वो प्रयास उच्च अवस्था पे नहीं पहुंचा तब तक भगवान उसे बांधने के लिए नहीं दिया। तो जब तक साधक स्तर पर कोई भी साधक भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से पूरी लगन से प्रयास नहीं करता है तब तक भगवान उसको कृपा देने के लिए तैयार नहीं है। तब तक जब तक वो भगवान उसको पूरी कृपा नहीं देंगे तब तक वो पूरी तरह से जागरूक नहीं हो सकता, पूरी तरह से भगवान को तत्वता नहीं जान सकता। जितना वो जागरूक है उतना वो तत्वता जान सकता है ना। जितना वो शरणागत है उतना वो भगवान उसको उसके जीवन में उतना साक्षात्कार दे सकते हैं है ना। पर पूरी जागृति पूरी शरणागति से ही प्राप्त होती है। तो शरणागति ये बहुत आवश्यक है, इस जागृति को पूरी अवेकनिंग स्टेज को प्राप्त करने के लिए शरणागति बहुत आवश्यक है। और इस तरह से अरे गारंटीड है, भगवद गीता इसलिए कहती है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुकम कर्तुम अव्ययम। ये जो विद्या है किंग ऑफ नॉलेज ये सारे विद्याओं का राजा है, राजगुह्यम है, ये कृष्ण भावना का जो ज्ञान है बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, गुह्य है, पवित्रम है, उत्तमम सब ज्ञान में उत्तम है और पवित्र है, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम और इस ज्ञान का कोई पूरी तरह से प्राप्त करने प्रयास करता है और उस ज्ञान के अनुसार चलता है जीवन व्यापन करता है, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम पूरी तरह से चेतना में जागृति होकर वो भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करेगा उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम और वो कैसा, तब वो जब वो पूरी तरह से जागृत होगा सुसुखम कर्तुम अव्ययम तब वो पूरी सुख को और आनंद को प्राप्त करेगा, इट्स गारंटीड, भगवान भी उसका गारंटी देते हैं। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुकम कर्तुम अभयम। ये पाठ कैसा है? सुसुकम है। या अगर कोई सक्सेस प्राप्त करता है तो पूरी तरह से सुख को, आनंद को प्राप्त कर लेता है, है कि नहीं? पर इस सारे अवस्था में व्यक्ति को तैयार होना चाहिए कि वो जग जाए। क्या हो जाए? जग जाए, जगने के लिए तैयार हो जाए। पर वो जगने के लिए तैयार ही नहीं होता है, है ना? जगने के लिए तैयार नहीं है। जीवात्मा भगवान को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर अपने इस भजन में, वैष्णव गीत में कहते हैं, जीव जागो गौरा चांद बोले। गौरा चांद, गौरा मापू बोल रहे हैं, जग जाओ अभी। कोत निद्रा याओ माया पिसा चिरकुले। कब तक माया पिसाचिनी की गोद में आप सोते रहोगे? भजीबो बोलिया ऐसे संसार भीतरोये, भूलिया रोहिलो तुम अविद्यार भोरे। इस जन्म मृत्यु के संसार में आते समय तुमने तो कहा था, क्या कहा था? कि भगवान मैं आपका भजन करूंगा, किंतु आप तुम अपने उस वचन को भूल गए हो और अविद्यार भोले। और कहां फंस गए हो? अविद्याओं में फंस गए हो। तुम्हारे लोहित आमी होई नु अवतार, आमी भी ना भंधुआर किया चे तुमार। तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए मैंने अवतार लिया है। गौरा मापू कह रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर गौरा मापू का भाव लेकर कहते हैं कि केवल तुम्हारे उद्धार के लिए मैंने अवतार लिया है, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कौन मित्र है? कौन मित्र है? आमी बिना बंधुआर के अचे तुमार, कोई आपका मित्र नहीं है। एने ची औषधि माया नशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लहो तुम्हें मागी। मैं माया रूपी रोग को जड़ से उखाड़ने की औषधि लाया हूं, आप प्रार्थना करते हुए यह हरे कृष्ण महामंत्र मुझसे ले लो। और कैसा, किस तरह से हमें हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त करना है? गौरव महापू को प्रार्थना करते हुए। गौरव महापू आए हैं, बहुत बड़ा धन लेके आए, गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक का धन लेके आए हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। इस हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक का धन है, ये कृष्ण प्रेम है, इससे कोई अंतर, कृष्ण प्रेम में और हरे कृष्ण महामंत्र में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान ही है। इस भाव से जब व्यक्ति पुकारता है, जैसा कि प्रभुपाद जी के भाव में एक बच्चा जैसे अपनी माँ के लिए रोता है, उस भाव से पुकारते हुए इस हरि नाम को लेता है, ऐसे भावों से लेता है, तब उसको हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त होता है और इस माया रूपी जगत से बाहर निकलने के लिए मदद प्राप्त होती है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर प्रभु चरण पोड़िया से ही हरिनाम मंत्र लोई लो मांगिया। भक्तिविनोद ठाकुर गौरा मापू के चरणों पर गिर पड़ते हैं और हरिनाम की भिक्षा मांगने के लिए पश्चात उन्हें महामंत्र प्राप्त होता है। और इस तरह से बारंबार गिड़गिड़ाते हुए चैतन्य महापू के चरणों में इस हरे कृष्ण महामंत्र को प्राप्त करने के लिए हमें भी इस तरह से प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र अगर इस संसार में देने के लिए कोई आया है तो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का ये मैसेज बाद में ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इन्होंने भी इसको आगे बढ़ाते हुए पाश्चात्य देशों में लेके गए। आज ही हरे कृष्ण महामंत्र के इसका ही परिणाम है, इस कीर्तन का परिणाम, इस जप का परिणाम है कि आज ये संस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है ना? इतने जीव जग रहे हैं, जीव जागो, जीव जग रहे चेतन महाप्रभु की कृपावश। तो हमें भी इस चेतना में जागृति करने के लिए इस हरिनाम की पूरी शरणागति के साथ उसको लेना आवश्यक है, ताकि बड़ी श्रद्धा से अगर इस हरिनाम को हम लेंगे, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, अपराध रहित, जब अपराध रहित और ध्यान पूर्वक कई सालों तक किए हुए जप का ये परिणाम है कि हमारी चेतना पूरी तरह से स्थित हो जाती है कि अभी मुझे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, मुझे सिर्फ गुरु कृष्ण वैष्णव को प्रसन्न करना है। वो पीछे नहीं हटता है। एक दो दिन का परिणाम नहीं है ये, बहुत वर्षों से किए हुए स्ट्रिक्ट साधना का ये परिणाम है। जब व्यक्ति पूरी तरह से ध्यान पूर्वक अपराध रही जप करता है, तब जाके उसको भावों में ये स्थित होता है वो, कि मुझे अभी सिर्फ गुरु वैष्णव के कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। हाँ, जब वो कार्य करता है, भले वो पूरी तरह से कृष्ण प्रेम में जागृत हुआ हो नहीं हो, फिर भी ऐसे भाव को प्राप्त कर कर वह एक प्रकार से जागृत अवस्था को प्राप्त करता है। ये जागृत अवस्था है। जब उसकी भावना भगवान गुरु को वैष्णव को प्रसन्न करने की बन जाती है, एक प्रकार से जागृत अवस्था है। जब तक साधक इस स्तर पर नहीं आता है, तब तक वो भी सोई हुई अवस्था में ही है। जितनी तरह जितनी परसेंटेज वो इतनी अवस्था में आया चुका है, उतनी परसेंटेज में वो जागृत अवस्था में है। तो इस श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा करने का हमने प्रयास किया। तो कुछ कॉमेंट्स है, प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। समय कितना बजे तक है?
9।
हाँ, तो समय हो गया है। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना, और आपसे हम आशीर्वाद की याचना करते हैं कि हम भी इस बड़ी शरणागति के भाव से भगवान नाम की शरणागति ले, ताकि जीवन में जीव असली जागृति हो सके, चेतना की सही जागृति। तो इसी आशय से हम लोग इस प्रवचन को विराम देते हैं। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद।